जो बात है स्मरण की जो बात है इस पर ज्यादा जोर दिए, इसलिए भगवान के स्वरूप के विषय में जैसी बात अपने समझ में आई, जैसे स्वरूप अपन इष्ट है भगवान के, श्री रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को, शिव जी को, या निराकार को, या साकार को, जिको रूप अपन अभिमत हुए है, वही को एक प्रकार से चिंतन स्मरण विशेष रूप से करना चाहिए। वो एकांत के मत को विशेष रूप से करना चाहिए। पूर्व में जितने ऋषि मुनि हुए हैं उनके चरित्र में देखने में भी यही बात आ रही है कि वे लोग एकांत में रह करके ज्यादा करके जब ध्यान किया करते थे। या तो समझो कि आपने जंगल में तो एकांत एकांत है, वन में कहीं वृक्ष के नीचे बैठ कर अपना ध्यान लगाओ, एकांत में जाकर एकांत और पवित्र जो देश उसकी बहुत महिमा है। इसलिए एकांत पवित्र देश के वहां बैठ करके के आसन से, और आसन जो है समभाव से बैठे, जैसे भगवान गीता में कह रहे कि समन काय प्रयोग गई हूँ, काया माने जो शरीर और गलो और मस्तक है सी धारणा चाहिए। देखो अभिप्राय जो ये है आठ शून्य आठ सारे है, तो काया जो अपने शरीर जो है जो ज्ञान से कमर जो है सूर्य प्रकार से झुक गया है, सब आठ सब है, नार जो है करो जो भी झुक गया है तभी आज सार है। इस बात से ये सीध रहे हैं यार को मेरु नल जो है अच्छी गैर की सीधी रहे तो बना से आज को नहीं आता, ये उनके नियम है। तो प्रत्यक्ष भी अकर कर देख लो तो एकांत के वहां सम भाव से बैठे, हर से नहीं आ रहा तो नेत्र बंद कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो नेत्र अपने सुझा रखे, नेत्र की जो वृत्ति है चाहिए वृत्ति में रखो, नासिका के अग्र भाग में रखो जैसे ठीक समझे, अथवा कोई मूर्ति को ध्यान करे तो भगवान को जो फोटो है उसको अपने सामने रख ले रहे सन्मुख में, और भगवान का नेत्र से नेत्र मिला करके ध्यान करे, भगवान को जो बुखार में केर जो है जो कोई बात या टेबल पर रख रहे हैं आसन भी दे उनके लिए, और नेत्र के उनके नेत्र के अपने नेत्र के लेवल बराबर से आ जाए तो और भी ठीक है। प्रथम सगुन को ध्यान करें तो चरणों से लेकर मस्तक तक ध्यान करके के फिर जो केर जो है मुखार बिंद के ऊपर लेकर ध्यान टिकाए, निराकार को ध्यान करें तो अपने नेत्र ने बंद कर कर करके और मन के बीच के वहां जो संकल्प है जिका को त्याग कर करके संकल्प रहित होकर और ध्यान करे। पहला तो बाहर का जितना जो विषय है जब आप इंद्रिया ने रोक लिया वहां तो बाहर की कोई भी चीज नहीं दिखे, या मन के भीतर के वहां जो अपने काम ने उन सबको पहला त्याग कर दिया, जैसे भगवान गीता में कहे हुए संकल्प है प्रभावां कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतो मन से इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समं ततः। छठी अध्याय के 24 के श्लोक में भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी जो कामना है उन सबको अशेषता से त्याग देवे, मन कोई प्रकार की कामना को अंश भी नहीं रहे, इस लोक या परलोक की या कोई भी प्रकार की कामना इच्छा वासना जितने जो कामनाओं के भेद हैं, इन संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दे रहे, कामना मात्र को त्याग कर दे रहे, कोई प्रकार को मन में संकल्प या कामना रखे ही नहीं, कोई भी बात की इच्छा नहीं रखे, संपूर्ण इच्छाओं से रहित होकर के और फिर मन के द्वारा इंद्रिय समूह जो है, जैसे कान है आंख है त्वचा है, जितनी इंद्रिया है उनको जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उन सबसे रहित हो जाए, मन के द्वारा इंद्रिय समूह को विषय से हटा करके रुके, विषय से हटाकर अंतर्मुख कर ले, यानी बाहर में जो वृत्तियां जा रही है नेत्र बाहर में देखे तो देख करें से रोक देवे, ये इंद्रिया बाहर में ही देखे तो बाहर के विषयों के संबंध से रहित कर दे, यानी संबंध भी छेद कर दे, यानी पुराने अपने अपने विषय से रोक देवे, कोई भी विषय के साथ संबंध नहीं रहने दे। उसके बाद के मां अब आप नेत्र बंद कर लिया, कान बंद कर लिया या बाहर के विषय में देखो सुनो छोड़ दे, इससे एकदम रहित होकर है, फिर मन के भीतर के वहां जो कोई भी फुरना हो है, संकल्प आ जावे तो आस्ते आस्ते जो है वो ब्राह्मण प्राप्त होगा, सने सने रूपरमेत बुद्धि गृह त्या आत्मसंस्कार ने किंचित भी चिंत, इस प्रकार से आपको ध्यान से करे, मन ने समझा करके की और मन का जो संकल्प है उससे रहित कर दे, आस्ते आस्ते उपराम को प्राप्त होगा, यानी उपरमुख है, उपराम को मतलब यही है कि संकल्प विकल्प से रहित हो गया, कोई भी प्रकार को संकल्प करे ही नहीं, बुद्धा धृतिग्रहित्या बुद्धा सात्विक जो धृति है उससे जीवित बुद्धि से मन को परमात्मा में लगा रहे, सदे सदे रूप में बुद्धा धृतिग्रहित्या आत्म समस्त ने कृत्वा न किंचित विचिन्त, सात्विक धृति का यह लक्षण लिखा है, धृत्या या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यविचारिणा द्वितीय अपार सात्विका या धार्य से मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अभिविचारेण द्वितीय अपार सात्विक और सात्विक दृष्टि है, ऐसी सात्विक दृष्टि है योग के बीच के वहां कोई प्रकार को दोष नहीं घटे, जिसकी जो वृत्तियों के निरोध को नाम योग है, तो समय से निरूपण में आस्ते आस्ते उपराम को प्राप्त होना है, तो ये एक प्रकार से वृत्ति को एकाग्र करना है या वृत्तियों को विषय से निरोध करना है, तो संसार के विषय से इसकी वृत्तियां रहित कर कर करके और मन और प्राण की इंद्रियां जैसे धारण हुए, मन को संग्रह विकल्प करना जो है उससे मन को रहित करना, मन की क्रिया क्या है कि संकल्प करना मन के वहां फूलना होनी इच्छा पर रहित कर दिया तो मन की क्रिया से रहित कर दियो, इंद्रिया की क्रिया से रहित पलाई एक प्रकार से हो गया, इंद्रिया को जो विषय के साथ में संबंध हो चुके विच्छेद कर दियो पलाई, श्वास जो आ जा रहा है इन्होंने भी अब रोक देवा तो श्वास की क्रिया भी रहित हो जा रहे, तो इंद्रिया जो है प्राण जो है मन जो है इन सबने क्रिया से रहित कर दे रहे, श्रीराम ने जो एक प्रकार से अपना अपने जो विषय उनके समझ से रहित कर दे रहे, सिर्फ बुद्धि के द्वारा, शुद्ध ही जो बुद्धि है, सूक्ष्म ही जो बुद्धि है, उसके द्वारा मन को परमात्मा के स्वरूप के वहां लगा दे, यानी मन से परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करे, संसार को ध्यान उठाकर फिर परमात्मा को ध्यान करे। एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार से थी आपने समझ करके बुद्धि से और मन को परमात्मा में लगा दियो। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद जो ब्रह्म को जो स्वरूप है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो सत्य और अनंत है, कोई ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है, भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा के सौसम ने भुला दे है, ऐसा निश्चय करे कि परमात्मा के स्वर कुछ भी नहीं है, या वह तो भी एक प्रकार से उन्होंने बाधक समझ करके बनाने भुला दे है, या उनसे रहित हो जावे, साधक जो है सो समझे ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करे, इस प्रकार से मन को परमात्मा में लगा दे है कि परमात्मा के सिवा और किसी को चिंतन करे ही नहीं। पूर्व के अभ्यास के दोष से यदि चिंतन भूत से हो जाए तो उसी वक्त लोग त्याग कर दे। ये तो निशक्ति मनस्तम तत्सत्व नियमित तदात बने पसंद नहीं। मन बाहर के कोई पदार्थ में चले जावे तो जहां जहां जावे वहां वहां से उसको उठा करके और फिर परमात्मा के मही ला करके लगा दे, और फिर समझे कि परमात्मा के स्वर किसी को भी चिंतन नहीं करे। इस प्रकार से थी अपने एकांत में बैठ कर साधन करे, या एक प्रकार से समझो कि मन के साथ में कसरत करे, मन के साथ में अपने समझा करके मन को जाकर के लगावे, जैसे बाल करना पा समझा करके लगावा, या एक प्रकार से थी मन ने सो शाम दाम से लोग दिखावे, उसके बीच के वहां आनंद को अनुभव करे परमात्मा के स्वरूप में, सगुण जो भगवान को स्वरूप हो रहे तो मैं खूब प्रेम करे, निराकार भगवान को स्वरूप हो रहे तो वह निराकार में प्रेम करे, यह समझे कि परमात्मा के स्वर आप कोई नहीं है, यही अपना पर निर्देशी है, अपने उनके साथ के मां खूब एकता करे, प्रेम करे, खूब अपनता करे, ज्ञान के सिद्धांत में उसके महानता करे, भक्ति के सिद्धांत के मोक्ष में ममता करे कि भगवान ऐसा हमारा है, ज्ञान के सिद्धांत के मोक्ष में तद्रूप होकर के मैंने आपको स्वरूप समझे, मैंने जिस किस प्रकार से चीज हुआ मन को एक परमात्मा के सिवा और इधर उधर नहीं जाने दे। अपना और करना ही क्या है, अपना आना इस उद्देश्य है, साधन के समान संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा मन को समझा करके और उसके बाद मन को लगाए, मन के द्वारा उसके मां रसास्वाद लेवे, रस को आस्वाद लेवे, चाहे आपने सुन लो कि भगवान के स्वरूप को जो रस है वो तो साकार स्वरूप को रस, निर्गुण हो तो निराकार स्वरूप को रस है, तो कोई प्रकार से रस को अनुभव करे, यही मन लोग देनो है। परमात्मा के ध्यान के वहां एकदम मस्त हो जाए, संसार को शरीर में सब जाए। और उसमें तन्मय हो जावे। एक परमात्मा से और कोई कोई ज्ञान नहीं है, बस इसके लिए विशेष चेष्टा करे। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
समझो। ईश्वर है, महात्मा है, या कोई भी संसार के वहां मनुष्य है, और वह अपने से सेवा स्वीकार कर ली, उनके पास कोई चीज अपना भेंट में भेजी, या कोई भी उन्होंने अपना कपड़ा दियो या भोजन करायो, या कोई भी बेटी अपना सेवा करी, तो यह बात तो आप मानो ही हो। इस प्रकार से इसका भाव से सेवा की जाए तो करने वाले की आत्मा शुद्ध होती है और उसकी आत्मा का कल्याण होता है। उसकी आत्मा के कल्याण के बीच के वहां सहायक कौन हुआ? जो अपनी सेवा स्वीकार करता है वही तो सहायक हुआ ना, तो वो अपने कल्याण करने वाला हुआ। इससे बढ़कर के और आपका क्या ही तोड़ सकता है? तो उसका एक अपने सिर पर ऋण समझना तो उचित ही बात है, न समझना जो है सो कृतज्ञता है, नहीं कृतज्ञता है, तो कम से कम कृतज्ञ होना चाहिए। द्वारा मेरा कल्याण हुआ, मैंने कल्याण के वहां मैंने बड़ी भारी मदद दी। संसार के बीच में तो लौकिक भी कोई आदमी किसी को मदद देवे, किसी के विवाह शादी हुए या समझो कि कोई भी अपने काम हुए और मैंने कोई सहायता देवे, संसारिक भी सहायता देवे, तो उपकार माने। अपना कोई कल्याण कर रहे अपने को अपना उपकार नहीं माना तो अपने कृतज्ञता है। अपने कल्याण में जो जो सहायक है, जो जो अपने मदद करने वाले हैं, वे सभी एक प्रकार से थी अपने पूजा करने के योग, सत्कार करने के योग, कम से कम उनका गुण तो घना चाहिए। मामूली कोई आपने मदद करे तो उसके गुण में कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो आपने बड़ी भारी मदद करे। बैंक तो अपना ऋण से मुक्त हो ही कर सका, तो बोले कि वो एक प्रकार से यह समझे है कि मारी सेवा करी, मारो उपकार करो, तो भी बैंक का ऋणी है। तो वो यदि आप बात समझे तो बैंक उदारता है, और छे समझे तो थारी उदारता है। सारे दोनों के माँ वही ज्यादा श्रेष्ठ है कि जो ज्यादा एक प्रकार से अपने ऊपर बिल्कुल ऋण समझे।
सेवा है
एक परम सेवा है।
संसार
संसारिक सुख पहुंचाने में या तो सेवा और परमार्थ विषय की जो मदद है वो परम सेवा। आपा तो करी कहीं की सेवा, हर को अपनी करी परम सेवा।
आपा तो समझो कि कोई भाई आ गया तो उसको जल पिला दिया, अन्न खिला दिया, कोई वस्त्र दे दिया, तो एक प्रकार से उसका छोटा उपकार किया और उसने हमारा बड़ा उपकार किया, क्योंकि उसने हमारी चीज स्वीकार कर ली, हमने वो चीज उसको दे निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से देने से ही उससे का फल होता है आत्म शुद्धि। आत्मा की शुद्धि होने से फिर आत्मा कल्याण हो जाता है। यदि कोई अपने से सेवा करावे ही नहीं तो कर्मों के आरंभ करे बिना तो निष्कर्म सिद्धि होती नहीं। कर्मों के आरंभ करे बिना भगवान गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं, न करुणा मनारंभा निष्कर्म पुरुषो स्मृति, के कर्मों के आरंभ के बिना पुरुष निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने द्वारा यदि किसी को परोपकार न हुए, स्वार्थ हित यदि अपनी चेष्टा न हुए, कोई अपने निष्काम कर्म न हुए, तो कर्मों के आरंभ के बिना निष्काम कर्म कैसे हुए? कर्म करे ही नहीं से काम और निष्काम के कुछ नहीं किया बोलो, तो कर्मों के करने से ती अपने निष्कर्म सिद्धि मिले, और कोई सेवा करानी ही नहीं मिले तो निष्कर्म सिद्धि कैसे हो? इस वास्ते आपा किसी को उपकार करे हो वो तो बने अपन संसारिक सुख पहुंचायो, वो आपने मुक्ति दे तो बैंको आपने उपकार मानो चाहिए कि भाई ठीक है। इस बात को ज्ञान कब होए, सेवा करने वालों करने के लिए तैयार होए और कराने वालों उस जन के बीच के मां इनकार करे तब मांग खुला करे, नहीं तो आप सेवा कर रहे हैं अपने मन में बड़ा भी बढ़ रहे हैं कि मैं बड़ो उपकार कर रहे हैं लोगों की सेवा कर करके यह बात मन में आई कि आप तो बड़ो भारी उपकार करे, तो बात सहकाम सेवा है, न करने से वह भी अच्छी ऊंचे दर्जे की चीज तो वही है जो निष्काम भाव से सेवा की जाए। एक बात समझनी चाहिए, एक बात को रहस्य है या वस्त्र है या कोई भी चीज देने वाला भाई यदि निष्काम भाव से देता है उस दाता का भी कल्याण होता है, और लेने वाला भाई यदि निष्काम भाव से लेता है तो लेने वाले का भी कल्याण होता है। ख्याल करना चाहिए कि एक भाई किसी को दान देवे और एक भाई लेवे, तो यह बात तो एक आदमी के समझ में आ जाती है कि देने वाला जो है वो तो पुण्य करता है, लाभ उठाता है, और लेने वाले के सिर पर भार चढ़ता है। यह बात तो समझ में लोगों को आती है, किंतु यह समझ में नहीं आती कि न्यायुक्त निष्काम भाव से देने वाला यदि देवे और लेने वाला यदि लेवे तो दोनों का ही परम कल्याण हुए। यह बात भी ठीक है कि एक दूसरे को देवे निष्काम भाव से तो उन दोनों का तो कल्याण हो जाए, किंतु देने वाले का भी लेने वाले का भी, ये बात किंतु रहस्य समझने योग्य है। मैं आपको देऊं छे बने दियो, इसमें दोनों का कल्याण है, किंतु साथ में यदि निष्काम भाव मित्रता के नाते छे मने कोई चीज दे रहे हो मैं थाने दे रही हूं, यह समझो कि कोई विवाह
जैसे कोई नूतो गाले तो मैं आपके यहाँ ब्याह के वहां 500 रुपया नूते का गाल दिया, थे मारे गाल दिया, ये तो मित्रता गुना आपको।